दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युत केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवानो आते नहीं तुम मिया के जैसे बुलाते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मिला के जैसे बुलाते नहीं वचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान खाते नहीं जैसे छोरी के जैसे खिलाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं मेरे छोरी के जैसे खिलाते नहीं वचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामो नारायणं जानकी वल्लभं वचुतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान सुधाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं वचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामो नारायणं जानकी वल्लभं वचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामो नारायणं जानकी वल्लभं वचुतम केशवम कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं वचुतम केशवम कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान जगते नहीं तुम राधा के जैसे जगते नहीं कौन कहता है भगवान जगते नहीं तुम राधा के जैसे जगते नहीं वचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामो नारायणं जानकी वल्लभं वचुतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं तुम गुप्तों के जैसे नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं तुम गोपियों के जैसे नाचते नहीं वचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामो नारायणं जानकी वल्लभं 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 जय राधा माधव कुंजा बिहारी जय राधा। Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribada Dhani Jaya Gopi Jana Vallabha Giribada Dhani Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Seva Shanti Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भागवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध एकादश अध्याय श्लोक संख्या 20। नित्यं यशोदा तमशेष शेखरं मत्वा यूतं मत्या शूतं स्नेहा निवध्या जीनिपा हस्ते गृहीत्वा शहरामं वच्युतं नित्वा शवातं कीतवत्त बोधयम्। इत्तम यशोदा तमशेष शेखरम्। इत्तम यशोदा तमशेष शेखरम्। न्यत्याशुतं मत्याशुतं स्नेह निबद्ध दीनिपं हस्ते गृहीत्वा शहराममच्युतम्। हस्ते गृहीत्वा शहराममच्युतम् नित्वा शवातं कृतवत् ततोदयम्। नित्वा शवातं कृतवत् ततोदयम्। इत्तं यशोदा तमशेष शेखरम्। इत्तं यशोदा तमशेष शेखरम्। मत्वा श्रुतं स्नेह निबद्ध दीनिपा हस्ते गृहीत्वा सहदा मम अच्युतम् नीत्वा शबातं कृतवत्ततोदयम् नित्तं यशोदा समशेषशेखरा मत्या सुतं स्नेहनिवत्तदेनिपा हस्ते गृहीत्वा सहरामममच्युतम् नीत्वा शबातं कृतवत्तथोदयम् that ityam is tarah yashoda yashoda tam ashesha shekharam krishna ko jo har shubh vastu ki parakashtha the jin mein gandagi ya ashuddhata ka prashna hi nahi tha मत्वा मानकर सूतम आपने पुत्र स्नेह निबद्ध थी अत्यधिक प्रेम भाव के कारण नीप हे राजा महाराज परीक्षित हस्ते हाथ में गृहित्वा लेकर शहरामम बलराम समेत अच्युतम कृष्ण को नित्वा लाकर शवाटम आपने घर कृतवती किया अतः अब उदयम न लाते धुलाने पर शिलोपाजी तथा अनुभव तथा तत्पर हे महाराज परीक्षित अत्यधिक प्रेमवश माता जशोदा ने समस्त ऐश्वर्य के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना। इस तरह वो बलराम के साथ कृष्ण को हाथ से पकड़कर घर ले आए जहां उन्होंने नहलाते धुलाते ये तरीका से पहनाने तथा भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। श्री गोपाल जी के तात्पर्य कृष्ण सदैव सच्चो तथा ऐश्वर्यमान है। उन्होंने नहाने धोने सजने घजने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी माता जशोदा में स्नेहवश उन्होंने सामान्य बालक समझा और आपने पुत्रों के साफ सुथरा और चमकीला रखने का अपना काम पूरा किया। ओम अज्ञान विदंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं शोभनो रघुनाथान्वितं तं सजीवं श्वाद्वैतं शावधूतं पुरीजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् शोभनो ललिता श्रीशकान्वितंश्च। नमयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतुदेशतारिणे। नम महाबलन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करदिवाचलं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण इस अध्याय का शीर्षक है कृष्ण की बाल लीलाएं। भगवान का बाल लीलाएं सुनने में सबको पसंद रहते हैं, जिसके लिए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के पास निवेदन की कि हे महाराज बाल लीला सुनने में मेरा चित्त आकर्षक होता है, मेरा हृदय निर्मल होता है, तो आप कृपापूर्वक बाल लीला का वर्णन कीजिए। तो बाल लीलाएं इतने आकर्षक है, इतने हृदयंगम है कि इस बाल लीला श्रवण करने के द्वारा अपना हृदय को निर्मल बना सकते हैं। उसके लिए महाराज परीक्षित के निवेदन को सुनकर सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण का बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं कि बाल लीला इस तरीके से तो आकर्षक है ही, क्योंकि रघुबा जी बताते हैं कि बचपना हर व्यक्ति का पसंद होता है। कोई व्यक्ति जब बुढ़ापा में आ जाते हैं तब भी अगर कोई उनका मित्र वगैरह आकर उनको बचपना के बारे कुछ बताए तो पसंद हो जाता है। इस प्रसंग में रघुबा जी को बता रहे थे कि मैंने जब अपना संसार मैंने छोड़ दिया हूं, मैंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर मैंने जब संन्यास ले लिया, घर के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं था, परिवार के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, फिर भी मेरा बचपन का एक दोस्त आ गए थे, मैंने ऐसा कोई शादी विवाह कार्यक्रम में मैंने गया था, बहुत ही सुंदर उसका वर्णन भी किया जिले गोपाल ने कि मैंने एक शादी विवाह कार्यक्रम में गए तो किसी का मन में प्रश्न आ सकता है कि सन्यासी होकर मैं किस तरीके से कोई शादी विवाह में मैं कैसे उपस्थित हो गया हूं। इसलिए गोपाल जी से वर्णन किए कि शादी विवाह एक मंगलदायक होता है और सन्यासी जाकर उसी मंगलदायक वस्तु को आशीर्वाद स्वरूप पात्रों तथा पात्री को निवेदन कर देते हैं, जिसके लिए कभी कभी संन्यास का भी शादी विवाह में उपस्थित होना जरूरी होता है। इसलिए गोपाल जी इस प्रसंग में वर्णन कर रहे हैं कि मैंने शादी विवाह कार्यक्रम में गए तो उसमें मैं जब आध्यात्मिक जीवन में नहीं आए थे इसी तरीका से, तब मेरा एक बचपन का मित्र मेरे को मिल गया थी इसी शादी विवाह कार्यक्रम। तो इसी तरीके से जब कोई शादी विवाह की एक जगह है जहां पे व्यक्ति का बहुत समय मिलता है, ऐसा तो किसी के पास कोई समय नहीं है, विशेष रूप से बंबई नगरी में किसी को अगर हमने फोन में भी बातचीत करेंगे तो बोलेंगे नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी मीटिंग में हूं, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं, मैं रास्ता में हूं, मैं फैक्ट्री में हूं, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूं। लेकिन शादी विवाह एक स्थली है, एक जगह है जहां पे व्यक्ति का बहुत, जय श्री राधा गिरी भगवान की जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की इस गोनिता की, कहते कि विवाह स्थली एक जगह जहां पे व्यक्ति का थोड़ा समय का फुर्सत मिलता है और उसी जगह में जाकर व्यक्ति थोड़ा रिलैक्स मूड में रहता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, कोई परिवार वगैरह आए उसके साथ बातचीत करना, तो इसी तरीके से रिलैक्स मूड में जाकर बातचीत कर सकते हैं। इसलिए बोबा जी बताए कि मैंने सन्यासी होकर भी मैंने एक शादी विवाह कार्यक्रम में मैंने गए थे, तो जाने के बाद मेरा बचपन का एक दोस्त मिला, जब मैंने इस आध्यात्मिक जगत में पूरा समर्पित नहीं थे उसी समय का एक दोस्त मेरे को मिला, एक मित्र। तो मित्र ने मेरा बचपन का कहानी बता रहे थे मेरे को, जिस मित्र को मेरे को मिले उसी मित्र और मैं बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, उसी शादी विवाह कार्यक्रम में वो मित्र मेरे को बचपन में हम लोग कैसे स्कूल में जाते थे, किस तरीका से स्कूल में पढ़ाई करते थे, उसका ऊपर चर्चा चालू की। भारत में मैंने उसी समय सन्यासी रूप लेकर आया लेकिन इस तरीके से कार्यकलाप मेरे को पसंद नहीं है, फिर भी मेरा मित्र जब उसी तरीके से चर्चा करने लगे तो ये बचपन का कहानी सुनकर मेरे को अच्छा लगे, तो मैंने बड़ा ध्यान से सुन रहे थे सब। तो पोपा जी बताते हैं कि बचपन में हाथ बालक का हृदय निर्मल रहता है, जाने अनजाने कुछ भी करे तो बचपना बचपना ही होता है। जिस तरीके से माता यशोदा ने सोच ली कि कृष्ण मेरा पुत्र है, पुत्र रुसल ने सोचने लगे उनको, भगवान रुसल नहीं सोचे उन्होंने, जिसके लिए उन्हें सोचा कि चलो आज कृष्ण बलम इतना खेल रहा है, आज उनका जन्मदिन है, मैंने नक्षत्र का हिसाब से आज उनका जन्म तिथि है। आधुनिक दुनिया में आज का दिन में जन्मदिन उत्सव बनाते हैं जिसको कहते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन। श्री गोपाल जी वर्णन करें कि वैदिक संस्कृति में, वैदिक कल्चर में बर्थडे बोलकर कोई शब्द नहीं था, तिथि तथा नक्षत्र हिसाब से बच्चा का जन्मदिन हम लोग मनाते थे। लेकिन आज का दुनिया में बर्थडे के हिसाब से जन्मदिन उत्सव मनाते हैं, पहले ऐसा नहीं था, दूसरे भावना से जन्मदिन उत्सव मनाते थे, तिथि और नक्षत्र का हिसाब से। इसके लिए जसोदा माँ ने सोच ली कि नक्षत्र हिसाब से आज मेरा पुत्र कृष्ण का आज जन्म नक्षत्र है। जैसा कि बर्थडे उत्सव किसी के घर में, जब कोई बच्चा का, विशेष रूप से बच्चे का जब जन्मदिन उत्सव होता है तो माँ बाप बड़ा खुशी रहते हैं, उसमें बहुत पुकार व्यंजन बनाकर खिलाते हैं, बहुत पुकार व्यंजन बनाकर माँ बाप अपना बेटा को लेकर आते हैं साथ में, और डाइनिंग टेबल में बैठकर एक साथ खाना पीना चालू हो जाते हैं। तो जसोदा माँ ने सोचने लगी कि आज नक्षत्र हिसाब से, जैसे बोध पकड़ कर नक्षत्र का वर्णन की है, जैसे कि चित्ता हो, अनिरुद्धा हो, फल्गुनी हो, हस्ता हो, स्वाति, विशाखा, बोध पकड़ नक्षत्र का वर्णन भी किया है। तो जसोदा माँ ने सोचने कि नक्षत्र के हिसाब से आज मेरा पुत्र कृष्ण का जन्मदिन, तो जन्मदिन के हिसाब से मैंने बोध पकड़ मैंने व्यंजन बनाया हूं, लेकिन मेरा पुत्र जाकर बाहर में खेल रहा है। पहले उन्होंने रोहिणी माता को भेज दी थी, लेकिन रोहिणी माता को बात को कृष्ण बलराम ने स्वीकार नहीं की, तब रोहिणी माता वापस आए आके जसोदा माँ को भेज दी, अपना सिंहों का कारण जसोदा माता को बात को उल्लंघन नहीं कर पाए कृष्ण बलराम। तब जसोदा माता को बात सुनकर दोनों आ गए। भक्तों ठाकुर बहुत ही सुंदर एक ये दोपहर का आरती है, उसमें है भजन गीत में कि उसमें वर्णन की है कि बैला हो लो आई लो आशीलो आओ तुम यहां आशा थे, बहुत सुंदर भजन है उसको, मैंने भूल गया हूं। तो जसोदा माता भावना इसी तरीके से थी कि आज मेरा बेटा का जन्मदिन, मैंने इतने पुकार व्यंजन मैंने बनाया हूं, तो मेरा मन में इच्छा थी कि मेरा आके एक साथ हम सब लोग मिलकर खाना खाए, इसके लिए उन्हें बुलाकर लेकर आए। तो अपना बेटा उन्होंने सोच लिया कि देखो बेटा इतना टाइम तक खेल रहे थे, बाद में पूरा शरीर में कितने सारे धूलिए आ गए, पूरा गंदगी आ गए पूरा शरीर में, चलो इस बच्चे को अच्छे से नहला देता हूं, अच्छे से स्नान करा देता हूं, सब साफ सुथरा करके अच्छे से बैठा कर मैं खिलाऊंगा। कहते कि बेला होइलो दामोदरो आयुष्य एखन, ये दामोदर ये कृष्ण बहुत समय हो गया, अभी बहुत टाइम तक अपने खेल चुके हो, अभी आओ आके थोड़ा हम लोग एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, इसको कहते कि स्नेह वश। जसोदा माँ सोचने लगी कि मेरा पुत्र है ये कृष्ण, वात्सल्य भाव से स्नेह भाव से मैं सोचने लगे कि मेरा बेटा ने इतना समय तक खेल चुके हैं, अभी उसको समय हो गए, सवेरे थोड़ा कुछ खाकर थोड़ा कुछ नाश्ता करके उन्होंने गए थे उधर खेलने के लिए, तो इतना समय तक खेले अपना मित्रों के साथ, पूरा शरीर में धूली हो गई, तो चलो चलो धूली धूला को मैं साफ कर देता हूं, नहा देता हूं अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके। लेकिन भगवान ऐश्वर्य मंडित होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर कोई देखे तो भगवान का कभी धूलि धूसर नहीं होता है, कभी भगवान को साफ इसी तरीके से साफ करने का जरूरी नहीं होता है, भगवान ये सब का एकदम ऊर्ध्व है जिसको कहते हैं, ऊपर में। फिर भी जसोदा माँ अपना पुत्र सोचकर, स्नेह अवश्य अपना पुत्र सोचकर उन्होंने صاف وغیرہ چالو کی, اچھا سے ان کو سان کرا دیے, دھولی دھوتا سب صاف کرا کر بیٹھا دیے کھانے کے لیے. یہ جاؤ بیٹا آؤ, ابھی بہت سمے تک اپنے کھیل چکے ہو, ابھی چلو ابھی آپ کو کھانے کا سمے ہو گیا. ابھی آپ کا سب جی اپنے کھا کے نکل گئے تھے, میں نے اسی سمے کچھ بھی نہیں بولا آپ کو, تو چلو ابھی. تو جشودا ماں کا بات کو انہوں نے الگھن نہیں کرتا, اس کے لیے کہتے کہ ہست گریتوا, شلوک میں لکھا ہے ہست گریتوا اپنا ہاتھ میں. شری گوپال اس میں ورنن کر رہے کہ ہست گریتوا مطلب اپنا ہاتھ کے در مطلب سنیہ وش, جیسے کہ ماتا کا اپنا پتر کا اوپر ایک سنیہ رہتا ہے, وشیش روپ سے بچپنا پوچھو. جب کہتے ہیں جب بچے جب سوتے ہیں, بچے جب جگے رہتے ہیں, تو ماتا کا پورا دھیان رہتا ہے بچے کا اوپر کہ بچے کو کس طریقے سے میرے کو دیکھ بھال کرنا ہے. بچہ جب سو جاتا ہے تو ماتا آ کر پورا گھر میں جتنے سارے کاریہ رہتا ہے, گھر کو صاف کرنا, یہ کرنا, برتن وغیرہ صاف کرنا, سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن بچہ جب تک جگے رہتے ہیں ماتا کا دھیان رہتا ہے اس کا اوپر. لیکن بڑا دکھ کی بات ہے کہ آج کا دن میں ماتا پتا بچے کو دیکھ بھال کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا, اس کے لیے اڑھائی سال عمر میں بچہ کو بھیجنا پڑتا ہے اسکول میں, کیونکہ ٹائم نہیں ہے کسی کو, بس سمے بالکل نہیں کسی کو. ڈال دیتا ہے اسکول میں, پلے گروپ میں, جس میں کچھ بھی پڑھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کچھ دن پہلے ایک پروچن سن رہا تھا لوکناتھ مہاراج کا, تو لوکناتھ مہاراج جی نے بتایا ہے کہ آج کے دن میں فیشن ہو گئے کہ بچہ کو اڑھائی سال جب عمر ہو جاتا ہے, بھالے بھی آڑھائی سال عمر میں بچہ اچھے طریقے سے چل بھی نہیں پاتا ہے, بات کرنا تو بات چھوڑ دیجیے, میٹھا میٹھا کچھ بات کہہ دیتے ہیں, تو پھر بھی بچہ کو پلے گروپ میں ڈالنا پڑتا ہے. پہلے یہ نہیں تھا, پہلے کم سے کم 5 سال عمر میں بچہ کو اسکول میں ڈالنا پڑتا تھا, کیونکہ اس میں تھوڑا برین شارپ تھا. برین اگر صحیح ہے, بدھی صحیح ہے, تو کچھ بھی وہ پکڑ سکتے تھے. لیکن آج کل ایک فیشن ہو گئے کہ 2.5 سال عمر میں بچہ کو پلے گروپ میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر کوئی ماتا پتا بچے کو پلے گروپ میں نہیں بھی ڈالے, تو جس کے گھر میں ماتا پتا دونوں چلا جاتے ہیں نوکری میں, تو بچہ کو رکھنا پڑتا ہے کڈس روم. بہت ساری جگہ ایسا ملا بہن بھائی میں کڈس روم بولتا ہے, بچے کو رکھنے کا, بچے کو دیکھ بھال کرنے کا جگہ. ہمارے تو بہت سندر سے بتا رہے تھے کہ آج کا دن میں جو فیشن ہو گئے, یہ فیشن کا چکر میں ہم لوگ سب پھنسے ہوئے ہیں کہ 2.5 سال عمر میں بچے کو ڈالنا پڑتا ہے پلے گروپ میں. پلے گروپ میں ڈالنے کا ایک ہی کارن کہ کسی کا پاس آج کل سمے ہے ہی نہیں. پیرنٹس آر سو بزی, جس کے لیے بچے کو ڈال دیتا ہے پلے گروپ میں, نہیں تو کڈس ہوم. تو پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ماتا پتا کا بچے کے اوپر اتنا پیار تھا کہ جتنا دن تک بچہ ہمارا ساتھ رہے, ہمارا گود میں رہے, اتنے ہی میرے لیے اچھا ہے. تو جشودا ماں اسی بھاونا سے کرشن کو دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ آج بچہ میرا بچہ کا نکشتر کا حساب سے, تیتھی کا حساب سے آج اس کا شبھ جنم دن, میں نے اتنی پکڑ ونجن میں نے بنایا ہوں, اپنے ہاتھ میں کھلانا چاہتا ہوں. اس کو کہتے کہ اسنیہ وش, اپنا ہاتھ میں انہوں نے کھلانا چاہے, جس کے لیے بلاتا لے کر ہے کہ بیٹا آؤ, ابھی تمہارا سمے ہو گئے, ابھی تم کو کھانے کا ٹائم ہے, تمہارا بہت ٹائم تک آپ کھیل چکے ہو, ابھی چلو اپنا متر کو سب بولے جاؤ, سب اپنا اپنا گھر میں جاؤ, اپنا بھی ماتا پتا آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے ابھی تک کچھ کھائے نہیں. تمہارے جی اس کو سب میں بتا رہے تھے, میں نے مہاراج کو جو پروچن میں نے سنا, جتنا تک میرے کو یاد ہے میں اتنے بتا رہا ہوں. تو مہاراج بتا رہے تھے کہ آج کا دن میں تو ایسا ہو گئے کہ جیسا کہ جیسے پہلے ایسا رہتا تھا کہتے کہ ایکانوتی پریوار, مطلب ایک ساتھ پورا پریوار رہتے تھے, آج کل تو ایسا ہو گئے کہ ہم دونوں ہمارا دونوں, मतलब माता पिता उनके साथ उनके दो बच्चे और कोई नहीं है साथ में। तो पहले ऐसा नहीं था कि एक साथ सब लोग बैठकर खाने खाना बात में बातचीत करना आनंद करना सब एक साथ रहते थे। आजकल तो ऐसा हो गया कि माता पिता का भी समय नहीं है अपना बच्चे के साथ खाने का। तो जिसके कारण माता जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो माता पिता का बड़ा आसक्ति बहुत कम हो जाता है। पहले जमाना में ऐसा नहीं था। इस जितना स्नेह जितना लव जितना ट्रस्ट जितना प्यार है जितना प्रेम है बच्चे के ऊपर बच्चा उसी तरीके से जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता को याद करते रहते हैं। आजकल वो लव एंड ट्रस्ट जिसको बोलते हैं मालिक बहुत अच्छे से बताया कि लव एंड ट्रस्ट खत्म हो गया आजकल। प्रेम जो है बच्चे के ऊपर वो है ही नहीं। जिसके लिए बच्चा जब बड़ा हो जाते हैं ना तो माता पिता का बात नहीं सुनते हैं। पेरेंट्स एक तरीके से बता रहा है तो बच्चा दूसरे तरीके से भाग रहा है। इसके कारण एक है कि जितना प्रेम होना चाहिए था उतना प्रेम नहीं है। इस लीला का गोपा जी बताया इसमें कि इस लीला का श्रवण करने का माध्यम से हम लोग ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे के ऊपर प्रेम होना चाहिए। अगर अपने अच्छे तरीके से बच्चे के ऊपर प्रेम रखेंगे लव एंड ट्रस्ट रहे आपका तो बच्चा भी बड़ा होकर उसी तरीके से माता पिता को रिस्पेक्ट देंगे मान देंगे उसी तरीके। नहीं तो आजकल ऐसा हो गया फैशन दुनिया में कि बच्चे को देखभाल करने का टाइम नहीं है जिसके लिए प्ले ग्रुप किड्स रूम इसी जगह में डालना पड़ता है बच्चा को। और वही बच्चा जब माता पिता का संग बिना बड़ा हो जाते हैं तो बच्चा जाकर जब बड़ा होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं बच्चा तो माता पिता को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो आइए आज हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज अभिराम गोपाल ठाकुर का शुभ तिरुभाव तिथि। ये अभिराम गोपाल ठाकुर एक ही चरित्र है जो कि ब्रज लीला तथा गौर लीला में एक ही देह लेकर आए थे जिनका नाम है अभिराम गोपाल ठाकुर जो कि ब्रज लीला में श्रीराम सखा और आज यही श्रीराम सखा जब गोवर्धन पर्वत में छुपे रहे थे तो नित्यानंद प्रभु जब गोवर्धन पर्वत गए एक बार तो गोवर्धन पर्वत परिक्रमा की करने के बाद आह्वान किए किसको ना श्रीराम सखा को तो श्रीराम सखा सब वापस आए बाहर आए नित्यानंद प्रभु को मिले और कहने लगे कि देखो मैं दूसरा बार मातृ गर्भ में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मेरे को मन में इच्छा है कि गौर लीला में मैं भाग लेना चाहता हूं। तो देखिए कितनी सुंदर लीला है भगवान का। वही श्रीराम सखा नित्यानंद प्रभु को कह दिया कि देखो मैंने गौर लीला में भाग लेना चाहता हूं लेकिन मैंने दूसरी बार मातृ गर्भ में नहीं जाना चाहता। तो नित्यानंद प्रभु कह दिए तुम्हारो अंगेरो आज ही धूलि लोइलो कैन चैतन्य भागवत ने इसका वर्णन किया है तथास्तु होइया तब दिलीलाम पान। तब नित्यानंद प्रभु उनको कृपा की और वही श्रीराम सखा सेम देह में मतलब एक ही देह में जिस देह में उन्होंने श्रीराम सखा में लीला की थी वही श्रीराम सखा का देह लेकर गौ लीला में उन्होंने अभिराम गोपाल ठाकुर नाम निकला है। अरे अभिराम गोपाल ठाकुर नाम स्वयं नित्यानंद प्रभु उनको दिए थे और आज ये अभिराम गोपाल ठाकुर का तिरुभाव तिथि प्रकट अप्रकट दिवस। तो अभिराम गोपाल ठाकुर कृष्ण नगर बोल के एक जगह है, जो नदिया में कृष्ण जहाँ पे कृष्ण नगर होकर हम लोग मायापुर जाते हैं वो कृष्ण नगर नहीं है। दूसरा और एक कृष्ण नगर है जिसका नाम है हुगली जिला में कृष्ण नगर है, जिसको कहते कि खानाकुल। ये खानाकुल, खानाकुल कृष्ण नगर में अभिराम गोपाल ठाकुर प्रकटित हुए थे। इनका धर्मपत्नी का नाम है मालिनी देवी। एक खानाकुल का नाम गौरमंडल भूमि में, जिन्हें गौरमंडल भूमि गौरमंडल परिक्रमा की है उनको जरूर पता होगा कि खानाकुल बड़ा प्रसिद्ध जगह है। किसके लिए प्रसिद्ध है ना? अभिराम गोपाल ठाकुर का सेवित विग्रह श्री श्री मदन गोपाल विग्रह को दर्शन करने के लिए गौरी और वैष्णव भक्त बिंदु उधर पहुंच जाते हैं हर समय। किस तरीका से गोपीनाथ विग्रह उधर प्रकटित होते, इसका बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन किया है शास्त्र। ये खानाकुल, जो खानाकुल कृष्णनगर, इसका पहले नाम था काजीपुर। काजीपुर से कैसे खानाकुल हुए? प्रभुपाद जी 1973 में ये खानाकुल कृष्णनगर एक बार दर्शन करने के लिए उन्होंने गए, तो उसमें वर्णन कर रहे कि जब ये खानाकुल प्रभुपाद जी गए दर्शन करने के लिए, उसी समय प्रभुपाद जी इतने भाग्यशाली थे कि अभिराम गोपाल ठाकुर का एक चाबुक था, चाबुक जिसका नाम है जय मंगल। तो जय मंगल चाबुक प्रभुपाद जी दर्शन करके आए थे 1973 में, 73 और 74 की 74 साल में प्रभुपाद जी जब खानापुर कृष्णपुर गए तो अभिराम गोपाल ठाकुर का एक चाबुक था, चाबुक जिसके द्वारा किसी को पीटना पड़ता है। तो अभिराम गोपाल ठाकुर भगवान का इतनी शुद्ध भक्त है कि शास्त्र में वर्णन की कि शालिग्राम और अर्चा विग्रह छोड़कर कोई भी देवता अगर कोई भी पत्थर को अगर अभिराम गोपाल ठाकुर प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम की, तो तुरंत वो पत्थर एकदम टुकड़ा टुकड़ा होकर फट जाते हैं, सिर्फ शालिग्राम और अर्चा विग्रह को छोड़कर। अरे जय मंगल चाबू, जिनके शरीर में एक बार भी अगर स्पर्श भी हुए उनका कृष्ण प्रेम जागृत होता है। श्रीनिवास आचार्य एक बार अभिराम ठाकुर को मिलने के लिए आए थे इसी खानाकुल में। तो बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन किया कि अभिराम ग्रंथ में इसके ऊपर, अभिराम पूर्वे सीदाम खानाकुले स्थिति खानाकुल कृष्णनगर ग्राम नहीं खेती। तो कहते हैं कि श्रीनिवास आचार्य जब पहली बार आए अभिराम गोपाल ठाकुर को मिलने के लिए, तब अभिराम गोपाल ठाकुर को जाकर जब श्रीनिवास आचार्य ने दंडवत प्रणाम की, तब अभिराम गोपाल ठाकुर उसी चाबुक को लेकर श्रीनिवास आचार्य को पीटना चालू की। मालिनी देवी उनका धर्म पत्नी कह रही है आप क्या कर रहे हो, वो बच्चे हैं, उसको अगर इसी तरीके से मारोगे उसको क्या हाल होगा बाद में। तो जब मालिनी देवी का बात सुनकर अभिराम गोपाल ठाकुर एकदम स्तंभित हो गए, बोले मैंने क्या कर रहा था इसको। लेकिन श्रीनिवास आचार्य उसी चाबुक के द्वारा दंड मिलने के बाद उनका कृष्ण प्रेम और आगे बढ़ना चालू हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जब 1974 में इस खानाकुल में गए तो श्रील प्रभुपाद इतने भाग्यशाली व्यक्ति थे कि जिनके कारण श्रील प्रभुपाद जी ने ओ जय मंगल चाबुक को उन्होंने दर्शन किए। आज जय मंगल चाबुक को दर्शन करने को उधर के तत्कालीन जो पुजारी थे, वही पुजारी ए जय मंगल चाबुक श्रील प्रभुपाद जी का मस्तक में रखे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया बाद में एक जगह में कि ये जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन में जो संघ को मैंने तैयार किया हूं, पहले अगर किसी को कृपा मिले तो अभिराम गोपाल ठाकुर को जय मंगल चाबुक। जय मंगल चाबुक के द्वारा मैंने भगवान का कृपा प्राप्त की और जिस कृपा के द्वारा मैंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ की स्थापना की थी 1966 में। तो बाद में इस जय मंगल चाबुक बाद में एक बजे वर्धन महाराज जी बता रहे थे कि श्री भोपाल जी का मुखारविंद से जब मैंने सुना ये जय मंगल चाबुक के बारे तो मेरा मन में बहुत उत्साह आया, मेरे को एक बार दर्शन करना है जय मंगल चाबुक। तो मैंने गया उसी जगह पर, लेकिन मैंने इतना भाग्यशाली व्यक्ति नहीं था जिसके कारण मैंने वो जय मंगल चाबुक को मैंने दर्शन नहीं कर पाया। कहानी ऐसा है कि उसी जगह पर बहुत मुसलमान राज था, तो एक विग्रह था जिस विग्रह है पीतल का विग्रह था, पीतल बोलते अष्ट धातु का। तो मुसलमान लोग ने रात को गोभी रात को आए आकर उसी विग्रह को चुरा कर लेकर गए और साथ साथ उसी जयमंगल चाबुक को भी लेकर गए, लेकिन भगवान को कौन चुरा सकते हैं। दो तीन दिन बाद वो विग्रह को मिल गए थे, लेकिन असली जो जय मंगल चाबुक वो चाबुक का किसको नहीं मिले। जब तक महाराज बता रहे थे कि मैंने इतना भाग्यशाली नहीं हूं जिसके लिए मैंने वो चाबुक को मैंने दर्शन नहीं कर पाया। तो अभिराम गोपाल ठाकुर के एक शिष्य था जिसका नाम है रामदास। रामदास को अभिराम गोपाल ठाकुर जीवन का बहुत ही सुंदर इसका लीला है जो कि अभिराम गोपाल ग्रंथ बोल के ग्रंथ है जिसमें इसका वर्णन किया है कि मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं कि 9:05 बाकी। तो एक शिष्य है उनका नाम है रामदास जो कि अभिराम गोपाल ठाकुर का पहले का नाम था रामदास। तो उनका जो शिष्य है उनका भी नाम है श्री रामदास। तो श्री रामदास को जीवन का अंतिम मुहूर्त में अभिराम गोपाल ठाकुर एक खानापुर का जो श्री विग्रह है इस श्री विग्रह का सेवा करने का दायित्व तो भार अर्पित करके है। तो रामदास ने सोचने लगे कि हे गुरुदेव, आपने मेरे को जो सेवा अर्पित करके गए, मेरा इतना योग्यता नहीं है उस सेवा को करने का, मैं कैसे आपको ये सेवा मैं कर नहीं सकता हूं आपका कृपा बिना। तो जैसे कि मां बाप बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाते हैं, उसी तरीके से अभिराम गोपाल ठाकुर अपना शिष्य को इसी तरीके से सिखाए कि किस तरीके से इसको सेवा करना है। जब जीवन का अंतिम मुहूर्त पूछ गए थे अभिराम गोपाल ठाकुर, तो रामदास का मन बड़ा दुखी हो गए कि मेरा परम प्रिय गुरुदेव लगते हैं मेरे को छोड़कर जा रहे हैं, उनको बिना मैं कैसे रह सकता हूं इसी जीवन पर। तो रोना चालू की सामने तब रामदास एक भास्कर मतलब जिन्होंने मूर्ति वगैरह बना था उसको कहते कि भास्कर, तो एक भास्कर को बुलाया है। बहुत ही सुंदर इसका वर्णन भी किया इसमें कि एक भास्कर को बुलाकर रामदास कहने लगे कि देखो भास्कर, मेरा मन में एक इच्छा है। मतलब क्या इच्छा है आपका मन में तो बताओ। तो कहने लगे मेरा गुरुदेव का एक सी मूर्ति आप बनाओ। अरे आपका गुरुदेव अभी भी जिंदा है, आप बोल रहे हो कि आपका गुरुदेव का मूर्ति बना, बताए मेरा मन में इच्छा आप मूर्ति तो बनाओ। तो भी हम गोपाल ठाकुर ने सुन लिए बात को, तो उन्होंने तुरंत वो भास्कर को बुलाए मतलब उसी जो मूर्ति बनाने वाले उसको उन्हें बुला लिए कि उन्होंने बनाए थे। उनका नाम है जो ये रामदास, रामदास उसका पहले का नाम था। जब अभिराम गोपाल ठाकुर उनको दीक्षा दी उनका नाम रख देते कि कानो कृष्ण। इसमें वर्णन करे कि कानो कृष्ण प्रभु दिया बोले न वचन, माई खोइया कहना कोई छोरदन। जब एक कानो कृष्ण अभिराम गोपाल ठाकुर का पहला शिष्य कानो कृष्ण जब इन्होंने रोना चालू की कि मेरा गुरुदेव अभिराम गोपाल ठाकुर तो उम्र हो गए, कभी उसको देव छोड़ सकता है, तो उनका बिना मैं कैसे रह सकता हूं। तो अभिराम ठाकुर कहने की माई ओया कहना पड़ी छोड़ो दान, आप कितना आप रो रहे हो। जैसा कोई व्यक्ति किसी के ऊपर शारीरिक आसक्ति रहते हैं तो उसके ऊपर इतनी तरीके से उनका रोते रहते हो। तब एक कान्हू कृष्ण ठाकुर ने और भास्कर को बुलाकर जब उन्होंने बनाए ये उनका मूर्ति बने अभिराम गोपाल ठाकुर को, तो कोनो कहे न गोसाई डाकिला भास्कर मोरो पति मूर्ति गोरी देह तो अमारे। तब अभिराम गोपाल ठाकुर कहने लगे कि कान्हू कृष्ण तुम्हारा मन में जो विचार है कि मेरे माफिक एक मूर्तियां बनाना चाहते ठीक है, भास्कर को बुला लो। तब उन्होंने भास्कर को बुलाए और भास्कर क्या किए ना आज्ञा मात्र भास्कर से मूर्ति जे गोरिला गोसाई लोहिया तहा कान्हू कृष्ण दिला। ये जो कान्हू कृष्ण जो अभिराम गोपाल ठाकुर का पहला शिष्य है, जो भास्कर ने अभिराम गोपाल ठाकुर का मूर्ति बनाकर अभिराम गोपाल ठाकुर को अर्पित की, देखिए भगवान का लीला किस तरीके से होता है। तो कान्हू कृष्ण ठाकुर पहले उनका मन में विचार था कि लगता है मेरा गुरु जी मेरे को छोड़ के जा रहे, इसके लिए मैंने एक मूर्ति बनाना चाहता। लेकिन गुरुदेव अंतर्जामी, गुरुदेव को पता था कि मेरा शिष्य का मन में ये विचार है। तब अभिराम गोपाल ठाकुर ने भास्कर को बुलाकर अपना मूर्ति बनाया और बनाकर क्या किए गोसाई लोहिया तहा कान्हू कृष्ण दिला। मतलब अभिराम गोपाल ठाकुर अपना विग्रह अपना मूर्ति जाकर अपना शिष्य कान्हू कृष्ण को अर्पित किया। सन्ध्या हुईले गोसाई गया निज घर बिंब चित्रे प्रवेश प्रतिमा भीतर। तो कान्हू कृष्ण ठाकुर उसी विग्रह को लेकर मंदिर में रखे। मंदिर में रखने के बाद जब शाम को आरती चल रही थी, बहुत ही सुंदर इस अप्रकट लीला को वर्णन किया है शास्त्र में। श्री बहुबा जी कह रहे थे कि एक जगह में उन्होंने लिखा भी है कि अभिराम गोपाल ठाकुर के इस अप्रकट लीला को कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान से भी श्रवण भी करे, प्रयास छंद में इतने अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है गोपाल जी वर्णन करके, मेरा इतना योग्यता नहीं है कि उसी पयर छंद को मैं अच्छे तरीके से देखा करूं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जितने भी पापी भी व्यक्ति हो अगर उसी पयर छंद का एक भी शब्द अगर उनका कान से हृदय में प्रवेश करे तो अभिराम गोपाल ठाकुर का जो जय मंगल चाबुक के द्वारा जो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है उसी तरीके से उसका जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें वर्णन किए कि अपना विग्रह को रख दिए मंदिर में, तो कान्हू कृष्ण ठाकुर उसका सेवा पूजा की बहुत ही अच्छे से। शाम को उन्होंने आरती की उसी विग्रह का, जब उसी विग्रह का आरती कर रहे थे कि देखा उसी विग्रह का जो छाती है, छाती का अंदर एक छोटा छिद्र है, बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है शास्त्रों में। तो एक ही छाती का अंदर एक छोटा छिद्र उन्होंने देख लिया, तो उसी छिद्र को जब देखा तो कान्हू कृष्ण ठाकुर का मन में एकदम दुख भर गए। जो मैंने इतने अच्छे तरीके से विग्रह जो मेरा गुरुजी मेरे को अर्पित किया अपने हाथ में और उसी विग्रह को मैंने आरती कर रहा हूं, लेकिन छाती के अंदर मैंने कभी छिद्र नहीं देखा हूं, किस तरीके से छिद्र हो गए। तब बड़ा धूमधाम से कीर्तन चल रहा था उसी जगह पर, इसी खाना कुंज में। आज जब कीर्तन होते होते जब कीर्तन करे तो अभिराम गोपाल ठाकुर दो हाथ ऊंचा करके भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे और उसमें वर्णन भी किया है शास्त्र में जयो प्राण नाथ मदन गोपाल।
তবুরাম গোপাল ঠাকুর আপনার মুখারবিন্দ সে উচ্চারণ করে কি জয় প্রাণ নাথ মদন গোপাল, দিশি জয় প্রাণ নাথ মদন গোপাল, ইসি শব্দ কো উচ্চারিত করতে করতে উসি বিগ্রহ কা অন্দর উনোনে প্রবেশ কর গে। আর যাব উসি যে ছিদ্র তা ছাতি, যাব শাস্ত্র মে বর্ণন ভি কি হ্যায় কি যাব ছিদ্র কে অন্দর সে ছিদ্র যাব থা উসমে যাব অভিরাম গোপাল ঠাকুর প্রবেশ কর লিয়ে তো বাদ মে ও ছিদ্র বন্ধ হো গয়ে থে। তো কানা কৃষ্ণ ঠাকুর সোচনে লাগে কি এ বিগ্রহ যো হ্যায় এ স্বয়ং অভিরাম গোপাল ঠাকুর হ্যায়, যে বিগ্রহ আজকার দিন মে ভি এক খানাপুর কৃষ্ণনগর মে বর্তমান হিন গৌর মন্ডল পরিক্রমা কি নিশ্চিত রূপ সে উনি বিগ্রহ প্রদর্শন কি গৌর মন্ডল ভূমি নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা নেই গৌর মন্ডল ভূমি মে এক দর্শনীয় জায়গা হ্যায় খানাপুর কৃষ্ণনগর। বহু সারে জায়গায় গৌর মন্ডল ভূমি মে যা পে অভিরাম গোপাল ঠাকুর কা বহু সারে লীলা করি হে। যে খানাপুর যা পে পহলে কা নাম থা কাজীপুর, অভিরাম গোপাল ঠাকুর ইসি কাজীপুর মে অভিরাম গোপাল ঠাকুর ধর্মপত্নী মালিনী দেবী তো কিস তরিকে সে উনি প্রকটিত কি থি ইসি জায়গা পর, উনোনে এক বক্স লেকার আয়া অভিরাম গোপাল ঠাকুর জিসকো বলতে হ্যায় ট্রাঙ্ক সুটকেস। সুটকেস কা অন্দর আপনার শক্তি কে দ্বারা উনোনে এক কন্যা রত্ন উনকা অন্দর ডাল দি, আর ডালনে কে বাদ উসি সুটকেস কো আচ্ছে তরিকে সে লক করকে নদী মে ভেজ দি, আর উসি সুটকেস এসা নদী মে ঘুমতে 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 আর ইসি জায়গা মে পৌঁছ গে থে কাজীপুর মে, আর নদী কা কিনারা মে আকর উসি সুটকেস রুক গে। তা নদী কা কিনারা মে বহু সারে খেতি করনে বালে এসা ঘুম রহে থে, উনোনে সোচা কি ইতনা বড়া সুটকেস আ গয়া ইসি জায়গা পর নিশ্চিত রূপ সে ইসকা অন্দর কোই রত্ন বগড়ে হোগা কোই ধন বগড়ে হোগা কোই সোনে বগড়ে হোগা, তো ইসি তরিকে সে সুটকেস কো পকড় কর লেকর আয়া। জব পকড় কর লেকর আয়ে উধর কা এক কাজী থা, তা কাজী নে সোচ লিয়ে কি দেখো হামারা রাজ মে হামারা সেবক লোক নে ইতনা বড়া সুটকেস মিলা নিশ্চিত রূপ সে উসি সুটকেস কা অন্দর কই ধন বগড়ে হোগা, তো কাজী নে আপনা আদমি কো ভেজ দি উসি জায়গা পর, জায়গা মে ভেজনে কে বাদ তো আপনা সেবক লোক নে সুটকেস জব খুলা দেখা কি উসকা অন্দর কই ধন নেই হ্যায়, এক কন্যা মতলব এক বালিকা কা রূপ হ্যায়। তো সেবক লোক নে সোচ নি বালিকা কো মিলে চলো বালিকা কো হাম লোক আচ্ছে তরিকে সে দেখভাল করে, ছোটে বালিকা হ্যায় তো উসকো আচ্ছে তরিকে সে দেখভাল করনা হ্যায়। তো কাজী নে সোচা কি দেখো হামারা সেবক লোক নে শায়দ লাগতে ধন কো ছুপা কে রখ দিয়ে হ্যায়, তো কাজী নে আপনা সেবক সব কো একদম বন্দি করকে লেকার আয়া আপনা কোষাগার মে, কে কি আমাদের রাজ মে আপ কাম কর রহে হো লেকিন জিতনে ধন আপকো মিলে ও ধন কো আপ বাপস করো। তো সেবক লোক কেন লেকি দেখো রাজা শায়দ কি আপকা রাজ দরবার মে আপ লোক কাম কর রহে হ্যায় লেকিন ধন রাশি কুছ নেই মিলা হ্যায় এক কন্যা রত্ন মিলা হ্যায়, কন্যা রত্ন মিলি লো তাহার ইসমে বর্ণন ভি কিয়া শাস্ত্র মে বহুত আচ্ছে সে কন্যা রত্ন মিলি লো তাহার। তো যাব কন্যা রত্ন মিল গে তব কাজী নে বতায় কি ঠিক আছে কন্যা রত্ন কো তো ভেজ দো, বতায় নেই কন্যা রত্ন কো পহলে পুছনা পড়েগা, আহ্বান করিল তারে কন্যা রত্নের আজি তব মর্জি মাফিক তুমি চলিলা সে কাজীর বাড়ি। বহুত সুন্দর একটা বর্ণন কে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে কে আহ্বান করিল তারে কন্যা রত্ন রাজি তোমার মসজিদে তুমি যাও শুধু কাজীর বাড়ি। তা দেখো মে আপকো ছোড়না নেই চাহতা লেকিন আগর আপকা মন মে ইচ্ছা হ্যায় তো আপ কাজী কা ঘর মে আপ যা সকতে। তব কাজী কাজী কা মন মে ভাবনা আ গই কি নেই কন্যা রত্ন কো মেরে কো মিলনা হ্যায় মেরে কো লেনা হ্যায়, তব আপনার সেবক লোক কে দিয়ে কি ঠিক হ্যায় মে তো জোর জোর সে কর নেই পাউঙ্গা লেকিন আগর উসি কন্যা আপকা ঘর মে মন সে আগর আনা চাহতে তো আ সকতে হ্যায়। তো কাজী নে বড়া ধুমধাম সে এক রথ বনায়ে সোনে কা রথ বনাকর ভেজ দি উসি কন্যা, तब उसी कन्या जब आए उनका घर में, जब उनका घर में आने के बाद उसी कन्याएं मालिनी देवी रूप लेकर पुकटित होकर काजी का दरबार में पहुंच गए और काजी को इसी तरीका से काजी रूप को छुड़ाकर परम वैष्णव भक्त बना दिए और उसी काजी वध में वही कन्या तथा मालिनी देवी को सेवा वगैरह चालू की थी और यही मालिनी देवी अभिराम गोपाल ठाकुर का धर्म। इसका बहुत ही सुंदर लीला है। बाद में इसी अभिराम गोपाल ठाकुर और मालिनी देवी का संपर्क के ऊपर खानापुर कृष्णनगर में बहुत सारे निंदनीय वाक्य भी प्रयोग हो रहे थे। एक बार एक जगह में बड़ा धूमधाम से कीर्तन चल रहे थे, मालिनी देवी और अभिराम गोपाल ठाकुर दोनों कीर्तन में नाचना चालू की एक साथ और इसी नित्य कीर्तन को देखकर कृष्णनगर खानापुर में बहुत सारे पाखंडी व्यक्ति अलग अलग तरीका से इसका वर्णन भी चालू की। आज मालिनी देवी जब नृत्य कर रही थी, मालिनी का साड़ी का जो आंचल होता है उसी आंचल एक ब्राह्मण का शरीर में टच हो गए, तो ब्राह्मण ने क्या की, ब्राह्मण ने उनको साप दे दी। तो साप देने के बाद मालिनी देवी बड़ा दुखी होकर अभिराम गोपाल ठाकुर के पास पहुंच गए कि देखो मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ गलती की ही नहीं, लेकिन मेरा साड़ी का आंचल नृत्य करने का समय उसी ब्राह्मण का मस्तक में चला गया, इसीलिए ब्राह्मण ने मेरे को साप दी। तो अभिराम गोपाल ठाकुर तुरंत ब्राह्मण को जाकर दूसरा एक साप दी कि गुरु सह मोड़ी तुम्हार, बोलते आप तो सर नहीं, मालिनी एक सच्च पतिव्रता परम जिनको आपने निंदा बात को प्रयोग करी, इसके कारण आपको सिर्फ आप नहीं आपके साथ साथ आपका गुरु को भी मृत्यु होने वाले है। तो बाद में इसका बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन किया चैतन्य भागवत भक्ति रत्न, चैतन्य भागवत में नहीं भक्ति रत्न का ग्रंथ में इसका, जो किस तरीके से गुरु तथा उनका शिष्य को मृत्यु हुई अभिराम गोपाल ठाकुर का अभिशाप के द्वारा। जब गुरु और शिष्य दोनों राजा ने पकड़ के लेकर गए कोई कारणवशत, हस्ती का मतलब हाथी का पायल का नीचे पीस दिए दोनों को, मुंडन अलग हो गए, एक मुंडन कह रहे कि मैंने अभिराम गोपाल ठाकुर का मंदिर बनाऊंगा और एक मुंडन कह रहे कि होरी होरी ध्वनि चल। इसका बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में विस्तारित रूप से। तो आज एक परम पवित्र आचार्य अभिराम गोपाल ठाकुर जिसका आज परम पवित्र तिरुभाव तिथि उत्सव, श्री प्रभुपाद जी बताए कि मैंने अभिराम गोपाल ठाकुर को ये उनका ये जय मंगल चाबुक के द्वारा प्रभावित होकर आज मैंने जो कृष्ण भावना में शंख मैंने तैयार की, कृष्ण प्रेम जो हृदय में मेरे जागृत हुई जब मैं पहली बार ये अभिराम गोपाल ठाकुर का जय मंगल चाबुक मेरा मस्तक में मैंने स्पर्श हुआ था। बहुत सारे लेक्चर में श्री गोपाल जी इस अभिराम गोपाल ठाकुर का जय मंगल चाबुक के बारे में उन्होंने वर्णन दिया है। तो आज एक महान पवित्र दिवस जो अभिराम गोपाल ठाकुर का तिरुभाव तिथि, तो अभिराम गोपाल ठाकुर के चरण में ये विनती निवेदन कि अभिराम गोपाल ठाकुर जिस तरीके से जगतवासी को कृष्ण प्रेम पिलाए उसी तरीके से परंपरा धारा में हम लोग के पास भी इसी तरीके से कृष्ण प्रेम आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिन्होंने गौर धाम परिक्रमा की है उनको जरूर पता होगा कि अभिराम गोपाल ठाकुर का ये जो इतिहास जिसका लीला पूरा हुगली जिला नहीं, हुगली नदिया वर्धमान पश्चिम बंगाल में जो 17 जिला है, ये अभिराम गोपाल ठाकुर एक चरित्र है जिसका 17 जिला में अधिक से अधिक जिला में अभिराम गोपाल ठाकुर का लीला स्थली है। आज से बंगाल में नहीं बांग्लादेश तक अभिराम गोपाल ठाकुर का लीलास्थली है। जितने सारे गौरी और पार्षद बिंद है सबसे अधिक लीला किए थे ये अभिराम गोपाल ठाकुर, जिसका एक से एक जगह है, जैसा कि एक जगह है खैयार बोल के, एक जगह है कैलाशोल बांग्लादेश में है चट्टोग्राम में, बहुत ही सुंदर लीलास्थली है उसमें। त्रिभुवाति जय अभिराम गोपाल ठाकुर त्रिभुवाति जय गौर प्रेमानंद। जिसको अगर पढ़ना है तो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। वंशा कल्पतिरुवश्च कृपा सिंधवयोः च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमः।
सुखदेव गोस्वामी ने पानी नहीं पिया।
अच्छा, मैं तो सुखदेव गोस्वामी